नहीं किया जाता है, जिसका मापन नहीं किया जाता है, इस प्रकार का ये आत्मा है। इसको समझने के लिए सात्विक बुद्धि चाहिए, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट है ना, इमोशनल क्वोशंट, दूसरा कौन सा है, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट, तीसरा कौन सा है, स्पिरिचुअल क्वोशंट। इसकी चर्चा पिछले समय हुई है। अब इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, इस श्लोक में भी भगवान आत्मा और शरीर के बारे में वही चर्चा कर रहे हैं, सेम, अभी खत्म नहीं हुआ है पिछले शुक्रवार को चर्चा की। आत्मा एक कोई ऐसी साधारण वस्तु नहीं है कि बस आधे पौने घंटे में बात कर लिया और समझ गया पूरा आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं, अभी चर्चा कंटिन्यू है। इसी श्लोक में भी वो वही बात वो बता रहे हैं, लेकिन इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंती न हन्यते। वो चर्चा कर रहे हैं कि दो प्रकार के लोग भ्रमित होते हैं संसार में, दो प्रकार के लोग बहुत मतलब 100% चांस है, चांस नहीं विश्वास है क्या विश्वास है कि दो प्रकार के लोग निश्चित तौर पे भ्रमित हो जाएंगे 100%। कौन से दो प्रकार के, जो ये समझते हैं, क्या समझते हैं, जो ये समझते नहीं, क्या नहीं समझते, आत्मा न तो मरता है न एनम वेत्ति हंतारम, न तो आत्मा मरता है न मारता है, आत्मा न तो मरता है ना ही मारता है। यह बात जो लोग नहीं समझते संसार में वो 100% कंफ्यूज लोग, भ्रमित है, अज्ञानी है। तो हमको समझना क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहली बात आत्मा न तो मरता है और ना ही मारता है। कोई ये कह सकता है कि ये जीव ने उस जीव को मारा, होती है ना मारपीट, कभी कभी झगड़े होते हैं मारपीट होती है, तो ये कह सकते हैं इस जीव ने उस जीव को मारा, ये सही व्याख्या है क्या, एक जीव दूसरे जीव को मारता है क्या, इसलिए वो कह रहे हैं ना तो ये जीव मरता है और ना ही ये जीव मारता है। पर जो इस बात को नहीं समझते हैं वो मोस्ट कंफ्यूज पीपल, सबसे ज्यादा भ्रमित लोग हैं इस संसार में। यह मुख्यत्वे इस बात की चर्चा भगवान इस श्लोक में कह रहे कर रहे हैं, 19 नंबर का श्लोक। और शास्त्रों को, शास्त्र से जो समझते हैं कि शस्त्रों से अस्त्रों से शरीर को मारा जा सकता है, लेकिन शस्त्रों से और अस्त्रों से शरीर को मारा जा सकता है, आत्मा को नहीं मारा जा सकता, क्यों, ठीक है। और अभी तो हमने चर्चा की है कि उसकी साइज कितनी है, बाल के 10,000 पार्ट करो तो उसमें का एक पार्ट की इतनी साइज जब आत्मा की है तो वो तो दिखेगा ही नहीं ना आंखों से, तो मारेंगे कैसे आज से इतने बड़े बड़े अक्षर देखने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है इतना छोटा आत्मा दिखेगा कैसे, तो मारेंगे कैसे उसको, मतलब लॉजिकली भी समझे तो ना, तो क्योंकि वो अति सूक्ष्म है और दूसरी बात वो आध्यात्मिक मतलब चिन्मय है, चिन्मय होने की वजह से हम शस्त्रास्त्रों से आत्मा को मार नहीं सकते। जब हमने पिछले श्लोक में चर्चा की थी कि आत्मा नित्य है, आत्मा मरता नहीं, इसलिए कोई भी मरता नहीं, बराबर है कि नहीं, आत्मा को मृत्यु नहीं, इसका अर्थ है कि कोई भी मरता नहीं, कोई भी मरता नहीं तो दुख क्यों? देर शुड बी नो शोक समा, कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि आत्मा कहीं ना कहीं तो गया ही है ना, खत्म तो हुआ नहीं। भगवान कह रहे आत्मा मरता नहीं, शरीर नष्ट होता है, आत्मा मरता नहीं। बराबर है, आपको क्या लगता है? हाँ क्या बोले, जो होता है हाँ, पर शरीर तो मरता है ना, पर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? जब मैं आत्मा हूँ और मैं मरता नहीं हूँ तो फिर दुख किस बात का? शरीर तो ये नहीं हो जैसे जाने वाला ही है, ये तो सबको पता है। कोई ऐसा है जो अभी 200-400 साल का अभी तक शरीर गए ही नहीं होता? सब गारंटेड है बात, शरीर तो खत्म ही होने वाला है, शरीर नष्ट होने वाला है, गारंटी पहले ही बताया कि शरीर नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, दुखों से पीड़ित है, ये सब शरीर के साथ होने वाला है। आत्मा मतलब मैं कौन हूं, मैं आत्मा, उसको कुछ भी नहीं होने वाला, मतलब मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं कहीं ना कहीं जाऊंगा, ये शरीर छोड़ के कहीं तो जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं तो जाऊंगा ना, तो फिर क्या है तुम कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना, भगवान यही समझा रहे, कहीं ना कहीं तो रहेंगे लोग, तो दुख क्यों करना है? अर्जुन को बता रहे क्यों दुख कर रहे हो, शरीर तो वैसे भी युद्ध नहीं करो तो भी जाएगा, युद्ध नहीं करो नहीं मारो तो भी शरीर तो जाएगा ही जाएगा 100%। तो इस आधार पर अनेक लोग विपरीत बातें भी करते हैं, है ना? विपरीत बातें क्या करते हैं? जब आत्मा नित्य है, आत्मा को मृत्यु ही नहीं है, और मुझे मैं जीवित ही रहने वाला हूं, मतलब आत्मा नित्य ही रहने वाला है, कहीं ना कहीं दूसरे शरीर में या दूसरे लोगों में या दूसरे स्थान पे तो रहने ही वाला है, और ये शरीर वैसे भी अनित्य है, खत्म होने वाला है, तो फिर पशु हत्या करके, जीवों की हत्या करके मांसाहार यदि हम करते हैं तो क्या प्राप्त है? ये नहीं हो, आत्मा तो जीवित ही रहता है, आत्मा को तो हम मार ही नहीं रहे ना, है कि नहीं? नहीं, कोई आत्मा को हम मार ही नहीं रहे, मार रहे शरीरों को, शरीर तो ऐसे भी नष्ट होने वाला है। तो जब शरीर ऐसे ही नष्ट होने वाला है तो हम उसको नष्ट करके खा गए तो क्या फर्क पड़ता? यदि हम मांसाहार करते हैं तो क्या फर्क पड़ता? आत्मा तो नित्य है, शरीर तो नित्य है, तो क्या कहेंगे आप? भगवान बोली कर्म बंधन है, और बोली हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं, लेकिन हिंसा तो हम ये वनस्पति वगैरह इनको भी काट के हिंसा ही करते, वो भी तो जीव ही है, वो भी हिंसा है ना, देखिए जिस बात का हमको अधिकार नहीं है, जिस बात की हमको अथॉरिटी नहीं है, वो बात हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम लोग सिविलाइज लोग हैं, सिविल पब्लिक है ना, सादे शर्ट पैंट पहन के बैठते हैं। यदि आपको बोला गया कि बहुत भयानक ट्रैफिक हो गया है यहाँ पे क्लब के सामने मेन रोड पे, कृपा करके वहां जाके जरा ट्रैफिक को कंट्रोल कीजिए, तो आप चले गए, हम गए अपने सिविल ड्रेस में और चौक के बीचों बीच खड़े रहे लोगों को निर्देश दे रहे, इधर जाओ इधर जाओ। तो लोग सुनेंगे आपका, क्या करेंगे? उड़ा देंगे। क्यों बीच में आके खड़ा हो गया करके उड़ा देंगे? क्यों? क्योंकि आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो ड्रेस कोड नहीं है, वो अथॉरिटी, वो अधिकार नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में यदि ये नियम है कि जिस बात का अधिकार हमको नहीं है वो बात नहीं करना चाहिए, यदि हमको इस बात का अधिकार भौतिक जगत में नहीं है तो आध्यात्मिक जगत में कैसा होगा? इस धराधाम पे साधारण लोगों के बीच में एक ये नियम लगते हैं तो वहां तो दिव्य नियम है, वहां तो ऊंचे स्तर के नियम है, या तो साधारण साधारण नियम है। इसी नियम को उच्च स्तर पे अब जब देखा जाए तो यह बात निश्चित तौर पे यह होती है, भले ही हम श्रेष्ठ हैं लेकिन हमको प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। हम वो अधिकार अपने पास नहीं ले सकते। कोई पुलिस अपने यूनिफॉर्म में जाके ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते क्योंकि उनका सुनेंगे लोग। वो शेर आके बकरे को खा सकता है, उसको अधिकार है। मनुष्य जाके बकरे को नहीं खा सकता, भले ही वो सोचे कि जीव अमर है, जीव का मृत्यु नहीं है और शरीर का मृत्यु है, लेकिन फिर भी यदि वो जिस चीज को उसने बनाया नहीं है उस वस्तु को तोड़ने का उसको कोई अधिकार नहीं। जिस मकान में मान लो हम रहते वो हमने बनाया नहीं है, हमारा नहीं है, तो उसको तोड़ने का हमको अधिकार है? हमारा मकान है तो हम तोड़ सकते हैं, हमने जो बनाया ही नहीं, जिसका ऑनरशिप हमारे पास नहीं है, उसको हम नहीं तोड़ सकते, उसको कैसे तोड़ेंगे? तो इसलिए अधिकार, अधिकार के अनुसार कर्म करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार भी है, राइट्स एंड ड्यूटीज, अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। हमारा अधिकार ये है पर हमारे कर्तव्य क्या है? हमारा अधिकार है कि हम इस संसार में आके सारे योनियों से हम श्रेष्ठ है, इसलिए सभी के ऊपर हम राज्य कर सकते हैं, सभी को हम नियंत्रित कर सकते हैं, सारे योनियों को, सारे भोग योनियों को हमारे नियंत्रण में रख सकते हैं। ये हमारा अधिकार है क्योंकि ददामि बुद्धि योगम तम, हमको बुद्धि प्राप्त हो गई है, हम स्पिरिचुअल पोषण के स्तर पे हम कार्य करते हैं। परंतु इस अधिकार के साथ कर्तव्य भी तो है, नहीं है? कर्तव्य नहीं है क्या हमारे कुछ भी? केवल अधिकार ही है क्या? ऐसा कभी होता है कि बस आपको अधिकार ही अधिकार है, कर्तव्य कुछ है ही नहीं? ऐसा है? आजकल समाज में ऐसे ही समझा जाता है। कैसा? हमको केवल अथॉरिटी चाहिए, ड्यूटीज नहीं चाहिए, कर्तव्य नहीं, केवल अधिकार। दिस इज माय राइट, ये मेरा अधिकार है। कोई बड़ी छाती ठोक के बड़े विश्वास के साथ रास्ते पे आके मोर्चा निकाल के बोल सकते कि ये हमारे कर्तव्य है, ये हमने करने चाहिए। इसके लिए कभी मोर्चा निकला आपने देखा? हाँ, मैंने तो नहीं देखा अभी तक, किसी ने देखा होगा तो। ये हमारे कर्तव्य है, हमने ये करना चाहिए, इसलिए हम मोर्चा निकाल, नहीं, कभी नहीं। ये हमारे अधिकार है, ये हमको चाहिए, इसलिए हम मोर्चा निकाल रहे, है ना? बड़ी भयंकर परिस्थिति। तो भले ही जीव अमर है, शरीर नष्ट होता है, इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि हम मांसाहार कर सकते हैं, हम प्राणियों को मार सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं और खा सकते हैं, इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। इस श्लोक में फिर कहते हैं भगवान, अविनाशी जीव को क्या चाहिए, कौन सा शरीर चाहिए, किस प्रकार से इस जीव को शरीर प्राप्त होता है? आप ये कह सोच सकते हैं कि जीव जब अमर है, जीव नित्य है, तो जीव ये सब कार्यकलाप करता ही क्यों? क्यों करता है? क्योंकि कर्म बंधन के अनुसार वो यहाँ वहां जाते रहता है। आपको किसी ने कहा अमेरिका जाइए, आप जा सकते हैं? तभी जा सकते हैं जब हमारे पास वीजा हो, पासपोर्ट हो और धन हो, हो तो हम जा सकते हैं। और यदि आप हमको कहा गया कि आप पुनः जाइए, तुरंत जा सकते हैं बस पकड़ के, इधर चर्च गेट जाइए तुरंत लोकल में बैठ के जा सकते हैं। तो प्रत्येक जगह जाने का एक क्वालिफिकेशन होता है ना। उसी प्रकार से ये जीव जो अनेकों जगह जाते रहता है, कभी ये शरीर में कभी वो शरीर में, तो वो प्रत्येक शरीर का जो प्रवास है, जर्नी, वो तभी करता है जब उसको वो अफोर्डेबल है। मतलब उस डेस्टिनेशन पे, उस जगह जाने के लिए उसके पास पात्रता है, तभी वो जीव वहां जाता है। मतलब वो पात्रता क्या है, उस प्रकार के उसने कर्म किए, इसलिए वो जीव उस जगह पे पहुंच जाता है। परंतु इस जीव का शरीर के साथ क्या संबंध है, ये जीव कैसा है, भगवान कह रहे हैं नित्य है। ये नित्य है और शरीर के साथ इसका संपर्क हो जाता है, सारा कार्यकलाप केवल इसी की वजह से होता है। इसकी वजह से होता है जीव का संपर्क शरीर के साथ हो गया, सारा संसार इसी की वजह से चल रहा है। बस ये जीव यदि शरीर के साथ संपर्क न करे, थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचिए, ये जीव शरीर के साथ संपर्क नहीं कर रहा है, शरीर के संपर्क में नहीं है, तो क्या करता है। जब ये जीव शरीर के संपर्क में नहीं होता है तो ये क्या कोई कर्म करता है? कर्म कौन करता है? कर्म शरीर से होता है। तो ये क्यों होता है फिर? इसका अर्थ ये कि केवल शरीर कर्म करता है क्या? यदि केवल शरीर कर्म करता हो तो मृत शरीर भी कर्म करना चाहिए। मतलब शरीर भी कर्म, वो शरीर कर्म करता है क्योंकि वो जीवात्मा शरीर के संपर्क में, और शरीर के संपर्क में जीव आने की वजह से सारी झंझट उत्पन्न हो गई है या होते रहती है, सब कुछ इसीलिए होता है। अब ये जीव है चिन्मय और ये शरीर है भौतिक, जीव क्या है? चिन्मय स्वरूप है और शरीर क्या है? मटेरियल है, पांच तत्वों से बना हुआ है। क्या है इसमें पांच तत्व? आकाश, आकाश कहते हैं जी, बताइए बताए। आकाश मतलब स्पेस, ये इतना शरीर जो 6 फीट का हाइट और 1.5 फीट का चौड़ाई जो है, ये इतना स्पेस हमेशा ऑक्यूपाई करता है ना। जब ये मृत हो जाता है तो इसमें का अग्नि, अग्निदाह होता है तो अग्नि में चला जाता है। ये शरीर जो मटेरियल है, इसमें जो मेटल्स है अनेक प्रकार के, आयन कैल्शियम ये वो सब, वो इस धरती में जो भी धातु है उसमें सब मिल जाते हैं। जल तत्व, जल तत्व में चला जाता है धरती के, अग्नि अग्नि के साथ चला जाता है, इस प्रकार से पृथ्वी पृथ्वी के साथ चली जाती है, पृथ्वी मतलब मटेरियल, सब मटेरियल में चला जाता है, जल जल में जाता है, अग्नि अग्नि में जाता है। और जब ये सब चले जाते तो अपने आप ये स्पेस, ये जो जगह हम 6 बाय 1.5 की जगह इतने सालों तक ऑक्यूपाई करके रखते हैं, इसका कोई किराया विराया देते कि नहीं? ओनरशिप में कुछ नहीं है यहाँ पे, ये जगह ओनरशिप में नहीं मिली, कोई है एग्रीमेंट आपके पास? ये 6 बाय 1.5 फीट की जगह हमारे ऑक्यूपाई करके रखी है, इसका एग्रीमेंट है क्या? तो ये तो रेंट पे है, तो रेंट पे है तो संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो ओनर जो है वो कुछ डैमेज कर दिया तो। तो इसलिए यह जो स्पेस है वो स्पेस में विलीन हो जाती है, इसको कहते हैं आकाश, आकाश में विलीन हो जाता है। अब ये हो गया मटेरियल। अब ये जो आत्मा है ये चिन्मय है, एकदम सूक्ष्म चिन्मय, चिन्मय। अब ये मटेरियल में आ गया, जैसे पानी में तेल डाल दिया, पानी में तेल डाल दिया तो मिक्स होगा क्या? पानी में तेल मिक्स होगा क्या? होगा वो दो, पानी और तेल का फ्रिक्शन हो सकता है, घर्षण होगा। जो चीज एक दूसरे में मिक्स होती नहीं, घर्षण होता है। इसी प्रकार से आत्मा शरीर में घुस गया तो शरीर के साथ घर्षण होते रहता है। शरीर के साथ घर्षण मतलब, क्योंकि वो उसमें मिक्स नहीं होता है, सेम मटेरियल नहीं, उसका अस्तित्व अलग है, इसका अस्तित्व अलग है, चेतना उत्पन्न हो गई है, इसलिए क्या होते रहता है, अनेक प्रकार के संघर्ष होते रहते हैं अंदर। दोनों के बीच में, दो मटेरियल के बीच में संघर्ष होते रहते हैं। और इसलिए व्यक्ति हमेशा आवेग में रहता है, आवेग उत्पन्न होते हैं, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, क्रोध, गुस्सा। इसीलिए किसी भी दो व्यक्ति का पटना बहुत मुश्किल है। कोई भी दो व्यक्ति पास में है, अरे कोई दूसरा नहीं भी है तो स्वयं का भी, अपना खुद के साथ भी नहीं जमता है बोलते अपने आप के ऊपर ही क्रोध करते हैं कई बार, नेचुरल है। दूसरे की पति पत्नी की बात तो बहुत आगे की बात है। अरे देवी देवता, देविया और देवता भी है, इंद्र की वाइफ जो है पत्नी, या कोई भी चंद्र की पत्नी, ये पति पत्नियों में भी ये सब कार्यकलाप चलते रहते, गुस्सा क्रोध। क्यों? क्योंकि जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन ही ऐसी है, इसमें ये मटेरियल में चिन्मय स्वरूप आ गया है, तो फ्रिक्शन होते रहता है, संघर्ष होते रहता है। इसलिए अपने आप से हम संघर्ष करते रहते हैं। अपने आप से संघर्ष नहीं, कोई नहीं होता है, कभी कभी ठीक ठीक होता है तो दूसरे से संघर्ष होता है, दूसरा नहीं है तो समाज से संघर्ष होता है, समाज से नहीं तो दो समाजों में संघर्ष होता है, दो समाजों में नहीं है तो दो देशों में संघर्ष होता है, दो देशों में नहीं है तो अभी पृथ्वी और मंगल में संघर्ष हो रहा है। वो बोलते हैं कि अभी हम मंगल पे जाएंगे, मंगल पे पानी है, इसमें वो है, उसमें ये है, यहाँ संघर्षमय जीवन, तो वहां जाने के लिए संघर्ष है। तो संघर्ष ये हमेशा लगा हुआ है, क्योंकि आत्मा जो है भौतिकता में आ गया, भौतिक शरीर में आत्मा, इसलिए वो संघर्षमय जीवन। ये देखिए, ये भी संघर्ष कर रहा है ये आत्मा उस शरीर में आ गया है, अब उसको लग रहा है कि कहीं जाके अच्छी जगह बैठूं, प्रवचन सुनूं, उसके लिए वो संघर्ष कर रहा है, उसको बहुत परेशानियों को झेलना पड़ रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से प्रत्येक जीव संघर्षमय जीवन जी रहा है। इसका कारण है कि, इसका कारण क्या है, शरीर में आत्मा। जाने दे रहे थे, वो अपना रास्ता देख लेगा, जब तक हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक वो हमको डिस्टर्ब होंगे, उसको घूमने दीजिए, इसके पास बैठता है, हमारे पास आएगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब क्या करेंगे, शरीर में तो आत्मा आ गया है, अब है भी संघर्षमय जीवन, कोई कारागिर रहता है, वो कारागिरी करता है, कार्य करता है, कोई कोई कारागिर कारागिरी करता है, अपना कार्य करता है, कैसे करता है, उसके पास क्या रहता है, औजार, औजार रहते हैं उसके पास, यदि बहुत अच्छे औजार है और बहुत अच्छे औजार तो है ही उसके पास, पर वो उसको चलाना जानता है, ये उसकी स्किल है, इसलिए वो कारागिर है, उसको बहुत अच्छी तरह से चलाना जानता है, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता है उन औजारों का उपयोग करके। परंतु यदि उसको बोला जाए कि आप बहुत एक्सपर्ट कारागिर हो, सारे संसार का स्किल पूरा अपनी है, इतने आप एक्सपर्ट हो, परंतु आपको औजार नहीं दिए गए, बिना औजार के आप कार्य करके दिखाइए, क्या होगा, करेगा कार्य, औजार नहीं किया, कार्य नहीं हो पाएगा। या बहुत अच्छे औजार है, एकदम इम्पोर्टेड, बहुत अच्छे औजार है, परंतु कारागिर स्किल्ड नहीं है, कारागिर के पास कोई स्किल नहीं है, तो औजार चलाते चलाते हाथ पैर तोड़ लेगा, नहीं ऐसा हो सकता है कि नहीं? हमारे पास औजार है, शरीर मतलब औजार अच्छा है, एकदम बढ़िया औजार है, सबसे बेस्ट है, जितने औजार संसार में उपलब्ध है, जितने शरीर संसार में है, उन सारे औजारों में, सारे शरीरों में सबसे बेस्ट औजार इंस्ट्रूमेंट तो मनुष्य शरीर है कि नहीं? यह जीवात्मा इसमें आ गया है, मतलब उसको करना क्या है, इस शरीर का बेस्ट यूज करें, अपना ही हाथ पैर नहीं तोड़े, ऐसे औजार ऐसी दिशा में चला के स्वयं के हाथ पैर नहीं तोड़े, मतलब ये जो औजार इंद्रिय रूपी शरीर रूपी औजार मिला है उसको इधर उधर किधर भी भटकाएंगे घुमाएंगे तो अपना ही हाथ पैर टूटेगा, अपना ही नुकसान होगा, हमको ही धोखा होगा, नहीं? और कार्य सफल तो होगा ही, कार्य सफल होगा लॉस हो जाएगा ना, नहीं? इसी प्रकार से भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस शरीर को, यह औजार है, कभी टूट सकता है, फूट सकता है, कंप्लीट नहीं है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, परंतु उसको कैसे चलाना है, उसको कैसे अच्छे रखना है, किस प्रकार से आपको चलाना है, ये स्किल से आप उसको चलाएं, इधर उधर मिस डायरेक्शन, गलत दिशाओं में औजारों को मत चलाइए, मतलब गलत दिशाओं में इंद्रियों को शरीर को मत ले जाइए। जीव भला इस शरीर में आने दीजिए, लेकिन शरीर को निग्रह करके, शरीर के ऊपर इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करके जीव के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, नहीं? जब बहुत ज्यादा घर्षण होता है, बेयरिंग्स होते हैं, बैलगाड़ी होती है, उसमें व्हील चलता है, कैसा फ्रिक्शन होता है, यदि उसमें ऑयल नहीं है, आपने देखा है बैलगाड़ी, सभी ने देखा है बैलगाड़ी, किसने नहीं देखा है, बॉम्बे में नहीं, इधर उधर कई गाँव में देखा, तो यदि उसमें ऑयल नहीं है तो कर आवाज करता है, तो उसमें ऑयल है तो घर्षण कम हो जाता है। उसी प्रकार से शरीर और आत्मा दोनों भले ही अलग अलग है, दोनों में संघर्ष भी है, ये इंस्ट्रूमेंट है, वो कारागिर है, ये औजार है, आत्मा कारागिर है, लेकिन दोनों में उस संघर्ष को कम करने के लिए, दोनों का आपस में अच्छा संबंध होने के लिए ऑयलिंग करना पड़ेगा, नहीं? थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ेगा, हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का ऑयल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये ऑयल के लिए देवी देवता भी भटकते रहते हैं इधर उधर, कहीं से हमको ये ऑयल मिल जाए, सुप्रीम बेस्ट क्वालिटी का ऑयल है और ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा उपलब्ध है। यदि इस मंत्रों का नित्य नियम से उच्चारण भी हम करते रहे तो हमारे अंदर का ही तो संघर्ष है, अर्जुन का क्या प्रॉब्लम है, अर्जुन को कोई अभी मारने के लिए आया, कोई किसी ने कुछ बोला है अर्जुन को, कुछ नहीं, अंदर का ही संघर्ष है, अपने आप से ही अर्जुन का संघर्ष चल रहा है, किसी दूसरे से नहीं चल रहा है, स्वयं के साथ संघर्ष चल रहा है, और वो संघर्ष क्यों है, क्योंकि आत्मज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों में टकराव हो रहा है, जो हमारे अंदर रोज होता है, क्षण क्षण हमारे अंदर टकराव ही टकराव होता है, आध्यात्मिक बातों का भौतिक बातों का, क्या करें क्या न करें, चलते रहता है। तो इसलिए अर्जुन बड़े भाग्यशाली है क्योंकि भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं। द्रौपदी जी ने दूसरे आगे के श्लोक के अंतिम में कहा है इसलिए अर्जुन को भगवान का उपदेश आवश्यक है और इसलिए सारे जीवों को ये भगवान कृष्ण के अनुगत्य में जो सारे भक्तगण आते हैं, आचार्यगण गुरुगण, भगवान कृष्ण के अनुगत्य में जो सब आते हैं उनके द्वारा उपदेश देना चाहिए। प्रभुपाद जी ने अगले एक श्लोक के तात्पर्य में लिखा है अंतिम, है ना, पढ़ा है ना अभी आपने, अर्जुन को भगवान कृष्ण मिला मिले और सारे जीवों को भगवान कृष्ण के परंपरा में उनके अनुगत्य में जो आचार्य गण मिलते हैं वो इसी प्रकार से उपदेश और कृपा दी, प्रभुपाद जी की जैसे कृपा हुई है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर तरीके से सब कुछ विस्तृत रूप से एज इट इज ऐसे यथारूप रखा है, तो हम कुछ बोल रहे हैं तो कैसे होगा। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना चाहिए कि नियम से बड़े प्रेम से हमारा ऑयलिंग करते रहे, गाड़ी का ऑयलिंग हमको करना पड़ता है, सर्विसिंग हर महीने में, इतना मटेरियल गाड़ी जो है इसकी कोई कीमत नहीं, उनका हम सर्विसिंग करते हैं, अपना नहीं करेंगे, अपना तो रोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो शारीरिक मानसिक भौतिक ऐसे तीन तीन गाड़ियां हैं, तीन तीन बड़ी हाई फाई गाड़ियां हैं, एकदम हाई क्लास की गाड़ियां हैं, तीनों का हमको ऑयलिंग करना पड़ता है, आसान नित्य करना चाहिए। अब आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमानेश। तो पिछले श्लोक का ये अभी जो 19वां श्लोक हुआ है उससे पहला लाइन क्या है, नायं हन्ति न हन्यते, वो कह रहे हैं कि जीव का कभी, जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता, शस्त्रास्त्रों से इसको मारा नहीं जाता, ना नायम हन्ति न हन्यते। और इस श्लोक में अंतिम लाइन क्या कह रहे हैं, शरीर नष्ट हो सकता है, आत्मा नष्ट नहीं होता, कभी भी नष्ट नहीं, हन्यते हन्यते, शरीर नष्ट भले ही होने दीजिए परंतु आत्मा नष्ट नहीं होता। वही बात, कितना भगवान को कंसर्न है आप सोचिए, अर्जुन को जैसे वही बात है, अर्जुन अभी जब क्यों समझा रहे हैं अर्जुन को कि आप मारो इनको, मारो इनको, क्यों, क्योंकि अर्जुन धर्म की बात कर, धर्म के ऊपर चलना चाहते, उस धर्म के ऊपर चलते चलते वो डर रहे कि नहीं मेरे से पार, वो पागलपन की वजह से किसी को मारना नहीं चाह रहे। रूपा जी कहते लास्ट लाइन उसी तो तात्पर्य में कहते, अर्जुन क्यों मार रहे, क्यों शरीरों को मार रहे हैं, शरीर को मारने के लिए क्यों कहा है या क्यों मारने के लिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको कोई स्वयं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है, किस लिए करना है, धर्म के लिए, पागलपन की वजह से वो कुछ किसी शरीरों को नहीं हत्या कर रहे, जीवों की हत्या नहीं कर रहे, मांसाहार के लिए वो नहीं किसी को मार रहे, धर्म का पालन करने के लिए किसी को मार रहे। वो बात वो करे अर्जुन, इस प्रकार से धर्म का रक्षण करे और शरीरों को मारे, जो शरीर उत्पात मचा रहे धर्म की रक्षा करने के लिए, यह बात को समझाने के लिए फिर भगवान ये श्लोक में कह रहे, न हन्यते हन्यमाने शरीर, कितनी बार बोलू न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर अनित्य है और आत्मा नित्य है। फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, शरीर में 6 प्रकार के बदलाव होते रहते हैं, 6 प्रकार कौन से पता है, जन्म होता है, ग्रोथ बढ़ता है, फिर थोड़े टाइम ऐसे ही रहता है, फिर उत्पत्ति उत्पन्न करता है, निर्मिति करता है, निर्माण करता है, विस्तार करता है, फिर क्षीण होते जाता है और फिर मृत्यु हो जाता है। ये शरीर के लक्षण है, इसके लक्षण है शरीर इस प्रकार से कार्य करता है, आत्मा ऐसे नहीं करता है, भगवान ये बोले। देखिए कितनी बार आत्मा इस प्रकार से नहीं करता है। आप अभी दो चार श्लोक में आपको कंटाला आ गया होगा, नहीं सबको इतनी बार यही बात है। आप सोचिए अर्जुन को उन्होंने पूरा अध्याय और इसके आगे का भी अध्याय इसी बात से बोला। अर्जुन कितना शुद्ध भक्त होंगे, हमको दो चार श्लोक में नींद आने लगती है, क्या वही बात की आत्मा शरीर की आत्मा शरीर। अर्जुन वहां पूरे युद्ध जन्य स्थिति में घंटों खड़े रहे, कितने पचासों श्लोक बोले भगवान ने, जीव शरीर आत्मा क्या है उसके ऊपर, तो भी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। तो भगवत गीता का फल तभी प्राप्त होता है जब इसको प्रेम से सुना जाए, कंटाला करके नहीं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इस छह प्रकार से जीव में बदलाव होते रहता है, जन्म होता है, मरता है, विचार करता है, क्षीण होता है, मृत्यु हो जाता है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से शरीर में ये सब होता है उस प्रकार से आत्मा के साथ नहीं होता है। पहली बात ये कि आत्मा ओल्ड नहीं होता है। आत्मा कितने साल पुराना है, मेरा जन्म फलाने साल का है, 50-40 साल का व्यक्ति है, 40 साल का आत्मा है, मैं बोल रहा हूं। 70 साल का व्यक्ति होने दीजिए, 80 साल का व्यक्ति होने दीजिए, या 17 साल का युवक होने दीजिए, दोनों में उत्साह सेम रहता है। कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसे कोई प्रभु जी होते हैं 70-80 साल की उम्र है, लेकिन 17-18 साल के युवक युवक से भी ज्यादा उत्साहित रहते हैं। कई बार देखा है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा जो है ओल्ड नहीं होता, आत्मा बूढ़ा नहीं होता है, तो बूढ़ापे से डरने का क्यों, आत्मा थोड़ी बूढ़ा होता है, आत्मा ओल्ड नहीं होता है। और इसका चार बातें जो भगवान ने इस श्लोक में बताए ना, जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता वान। भगवान कह रहे नायम भूतवा भविता, मतलब इस जो भूत भविष्य वर्तमान रूपा जी तात्पर्य में कह रहे हैं, यदि इसने इसका आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, ये नहीं बोल सकते कि आत्मा 50 साल पहले आत्मा ऐसा ऐसा था, अब जरा ऐसा ऐसा हो गया, 50 साल पहले आत्मा को करी राइस अच्छा लगता था, आज आत्मा को जलेबी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है। आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है, और यही प्रूफ है उसका कि 70 साल का व्यक्ति को भी उत्साह उत्साह ही रहता है, 17 साल के व्यक्ति को भी उत्साह उत्साह, मतलब वो आत्मा वही सेम। अब इसमें दो प्रकार की आत्मा का वर्णन है, दो प्रकार के आत्मा होते हैं, एक अणुआत्मा, अणुआत्मा रूपा जी ने कठोपनिषद में का रेफरेंस दिया है। अणुआत्मा और विभु आत्मा में क्या फर्क होता है, विभु आत्मा केवल एक है, विभु आत्मा सर्वव्यापी सर्वव्याप्त, विभु आत्मा जो है वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जानता है, और अणुआत्मा जो है उसको भूलने की आदत है। क्या है, अणुआत्मा को भूलने की आदत, भूलते रहता है, भूलते रहता है, भूलते ही रहता है, और विभु आत्मा को सब याद रहता है, सब पता रहता है, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट, है कि नहीं, ऐसा ही है ना। अब जब अर्जुन भूले हैं इसीलिए तो भगवद गीता वो विभु आत्मा अणुआत्मा को बोल रहे हैं। जब अणुआत्मा भूल जाता है तो विभु आत्मा उसके लिए कुछ करता है, तो याद करो, अणुआत्मा अर्जुन है, भूलने की आदत है, भूल गए, अभी अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मैं तो देख लूंगा एक एक को, चलो जरा दिखाओ मुझे उनके सामने ले चलो, अपने वाक्य क्या बोले वो भूल गए, अपने शक्ति को भूल गए, धर्म की बात को भूल गए। अब इस बात को तो विभु आत्मा को याद दिलाना था, इसलिए अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं। अब इस श्लोक में सजायते म्रियते वा कदाचन नायम भूतवा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। इसमें चार जो बातें हैं, चार बातें आत्मा की विशेषता के बारे में बताई। आत्मा की क्या विशेषता है वो चार बातों में बताई, और चार आत्मा के निषेध जो आत्मा नहीं करता है, निषेध मतलब वो नहीं करता है, प्रोहिबिटेड। चार बातें जो आत्मा नहीं करता है उसके बारे में बताया है, और चार बातें आत्मा की विशेषता के बारे में। ठीक है, जायते म्रियते, चार विशेषता क्या है? अजो नित्य, विशेषता बाद में दी है, और जो नहीं करता है निषेध है वो पहले दिए। तो हम पहले देखेंगे विशेषता है क्या है, विशेषता क्या है। अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, अजो, अजो मतलब अजन्मा, नित्य, अजो नित्यम, नित्य, नित्य है मतलब यह नित्य है, हमेशा है, ये कभी खत्म नहीं हुआ है, यह नित्य है, शाश्वत है, शाश्वत मतलब गारंटेड, शाश्वती जिसको कहते हैं, शाश्वती है मतलब शाश्वत है, गारंटी है इसकी, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा इसकी गारंटी है, शाश्वत है। अजो नित्य शाश्वत हो यम पुराण, पुरातन है। चार विशेषता हो गई युवात्मा की, ये चार विशेषता है। अब चार निषेध भी इसी श्लोक में बताए हैं भगवान। चार निषेध क्या है? न जायते मतलब यह जन्म नहीं लेता, न म्रियते इसका मृत्यु भी नहीं होता है, वा कदाचन ऐसा नहीं कि एक बार उत्पन्न होकर फिर गगुल हो गया दिखता ही नहीं, अभी किधर भी नहीं है, एक बार हो गया उत्पन्न, अभी किधर ही नहीं है, कहीं पे नहीं है। कदाचन न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का, शरीर नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होता है, मतलब शरीर के नष्ट होने पर यह नष्ट नहीं। ये चार कदाचिन, कदाचिन मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया, एक बार आ गया बस एंड हो गया, अभी ना तो कहीं जाएगा ना इसमें रहेगा, खत्म, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, एक बार आया बस हो गया, तो अभी इधर जाएगा ना उधर जाएगा ना ऊपर जाएगा नीचे कहीं नहीं, गया बस आया खत्म हो गया, दैट्स इट, फिनिश, खत्म होना, फिनिश। जैसे स्थित होना नहीं बोलते उसको, जैसे मृत्यु हो गया तो मृत्यु हो गया तो बस फिनिश, नहीं नहीं, आत्मा भी फिनिश, सब फिनिश, इसको कहते हैं कदाचित, मतलब ऐसा नहीं है, आत्मा ऐसा भी नहीं है कि एक बार आने के बाद खत्म हो जाता है फिर से नहीं आता, ऐसा नहीं है, वो आते रहता है जाते रहता है। क्या हुआ? अंत नहीं है, ये तो बात ठीक है, पर यहाँ बहुत स्पेसिफिकली कदाचन का अर्थ यदि थोड़ा सा और इसमें समझे तो ये है कि अब जन्म हुआ है, अब मृत्यु हो जाएगा, अब मृत्यु के बाद क्या होगा? नहीं, इसने ऐसा कहा, इसका अर्थ ये होता है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए। कुछ कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया बस, ना तो आत्मा स्वर्ग में जाएगा, ना पाताल में जाएगा, ना गोलोक में जाएगा, ना कोई योनि में जाएगा, ना मनुष्य बनेगा, ना कुछ नहीं, शरीर जैसा लुप्त तो हो जाता है वैसे आत्मा भी लुप्त तो। इसकी इस पर चर्चा करेंगे एक पॉइंट की। तो पहले ये ध्यान में रखिए, चार विशेषताएं और चार निषेध मतलब प्रोहिबिशन, तो नहीं करता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
बीच में ऑयलिंग किया किसी तो आवाज आने लगता है। हा? तो इस प्रकार से चार विशेषताएं और चार निषेध। तो हम पहला निषेध देखते हैं, ये जीवात्मा जन्म नहीं लेता है, न जायते। संसार में जितने शरीर है, जितने संसार में शरीर है, उन सारे शरीरों का जन्म होता है। किसी भी जीवात्मा का जन्म कभी भी नहीं होता है, क्योंकि क्या है, जीवात्मा को कर्म बंधन के अनुसार ही आना पड़ता है। जीवात्मा को कर्म बंधन के अनुसार आना पड़ता है, जीवात्मा के कारण शरीर का जन्म होता है। उल्टा जो है, शरीर के कारण जीवात्मा का जन्म होता नहीं है, शरीर के कारण जीवात्मा का जन्म होता नहीं है, जीवात्मा के कारण शरीर का जन्म होता है। ये फॉर्मूला है, ध्यान में रखिए। कभी सोचना नहीं चाहिए कि शरीर के कारण जीवात्मा का जन्म हुआ, नहीं। यह जीवात्मा एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो कर्म और कर्म का अपना बोझ संस्कार लेके निकलता है। बड़ी अच्छी एनालॉजी वैदिक वेदांत सूत्र में कहीं एक्सप्लेनेशन बताया गया है। जब व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उस शरीर को चार लोग पकड़ के ले जाते हैं कंधे पे, तो ये चार लोग मतलब चार प्रकार का सूक्ष्म शरीर, अहंकार, बुद्धि, अहंकार मन और संस्कार। आत्मा को भी ये चार ऐसे ले जाते हैं, सिग्निफिकेंस है, रिलेशनशिप है। आत्मा को भी ये चार लोग इस प्रकार से ले जाते हैं, संस्कार, मन, बुद्धि। लेकिन होता क्या है, जब ये आत्मा इस प्रकार से ये सब लोग इसको ले जाते हैं तो ये संस्कार रहता है, इसके ऊपर जो इम्प्रेशन प्रभाव हुआ रहता है मन के ऊपर, उसी के अनुसार ये लोग शरीर ढूंढते हैं दूसरा, है कि नहीं। जो अपने पास होगा उसी के अनुसार तो अपन कुछ ढूंढते रहते हैं ना, तो कैपेसिटी जैसी होगी उसी प्रकार से हम कुछ ढूंढते रहते हैं। तो उसी प्रकार से ये लोग ढूंढते रहते हैं कि अब कौन से शरीर में जाए, अपनी टेस्ट कहां पे सेटिस्फाई होगी, अपने विचार कहां पे सेटिस्फाई होगे। और जब इनको ऐसे लगता है कि अच्छा उस घर में उस जगह पे अब ये शरीर मुझे प्राप्त हो सकता है जिसमें मेरी ये सारी डिजायर, ये सारी टेस्ट सेटिस्फाई होगी, तो ये चार लोग इस प्रकार से शरीर को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से यदि आप श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद 21वां अध्याय देखेंगे तो उसमें एकदम विस्तार से वर्णन है। कपिल देव देवहूति माता देवहूति को बताते हैं कि जन्म कैसे होता है, किस प्रकार से जन्म होता है, गर्भ में जीव कैसे अवतरित होता है, जीव कैसे गर्भ में आता है। अपने कर्म फल के अनुसार विशेष शरीर धारण करने के लिए, अपने ही कर्म फल के अनुसार, मतलब अपने इसके ऊपर मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर के ऊपर जो संस्कार हो चुके हैं वो संस्कारों के अनुसार, वो इच्छाओं के अनुसार, वो जो कर्म किए उस कर्मों के प्रभावों के अनुसार ये जीवात्मा क्या करता है, विशेष शरीर धारण करने के लिए क्या करता है, स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से उसमें वर्णन है कि किस प्रकार से गर्भ आता होता आता है, फिर बढ़ता है, फिर शरीर द्रव, द्रव से शरीर, शरीर से आकार, आकार से इंद्रिय, और फिर जीवात्मा कैसे घुस जाता है इस शरीर में, सब होने के बाद भागवतम में आगे उसी अध्याय में वर्णन है कि फिर इतने सारे संस्कार विचार ये सब लेके जब ये आता है तो पिछले जन्म का याद क्यों नहीं रहता। उसके अनेक कारण बताए गए हैं। मुख्य एक कारण है कि जन्म के समय उस शरीर को और उस जीवात्मा को बड़ी प्रताड़नाएं होती है, बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है और बार बार उसका सर के ऊपर आघात होते रहते हैं। सर के ऊपर आघात होते रहने की वजह से स्मृति खत्म हो जाती, याददाश्त पुराने जन्म की, पर संस्कार रहते हैं थोड़े बहुत। संस्कार की थोड़े देर के लिए बहुत थोड़े बहुत विस्मृति होती है, लेकिन वो संस्कार रहते ही रहते हैं। जब वो एकादा व्यक्ति बाहर घर के बाहर निकलता है और जब देखता है कोई एकादा खटिक का बचर हाउस देखता है तो वो एकदम वो संस्कार उसके अंदर की जागृत हो जाते हैं। हाँ भाई, तो डॉग था पहले और ये सब मुझे दिख रहा है, अभी ये सब मैंने खाना चाहिए, क्योंकि वो देखने की वजह से इंद्रियों ने उसको दर्शन कर लिया उन सब बातों का जिसका ऑलरेडी इधर संस्कार था। तो उस प्रकार से वो इस शरीर में भी उसी प्रकार से वो वर्तन करेगा, इसी प्रकार से बिहेव करेगा। मनुष्य होके भी कभी कभी जानवरों के जैसा बिहेव करते हैं। कुछ दिन पहले न्यूज आई थी, एक छोटे से बच्चे को कुछ रुपयों के लिए मार दिया, कर दिया। ये काम किसका? जानवरों का है, क्योंकि कुछ वस्तुओं को उसने देखा संसार में और उसके अंदर वो हिंस्र पशु घुस गया। आजकल यही होता है, ज्यादातर हिंस्र पशु ही घुसते हैं अंदर, क्योंकि हमको भी पता नहीं है हमारे अंदर ऊपर कौन से संस्कार, कितने जन्मों के क्या संस्कार। इसलिए अपने आप को यदि हम बचाना चाहते हैं तो अपने पुराने संस्कारों को खत्म करो, और पुराने संस्कारों को खत्म करने का भी एक ही तरीका है,
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे
हरे राम हरे राम राम राम।
यहाँ पे जीवात्मा के कारण गर्भ में शरीर बनता है, इस बात को समझो।
तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? न जायते जीवात्मा जन्म न, जो नित्यम है, और दूसरे इसका रेफरेंस है यह जीवात्मा जन्म नहीं लेता है, निषेध के साथ यह जीवात्मा जन्म नहीं लेता है। जन्म कौन लेता है? शरीर लेता है, लेकिन कारण क्या है? ऐसा नहीं कि पहले जीवात्मा आ गया जन्म ले लिया अब शरीर आएगा, ऐसा नहीं होगा। जीवात्मा के ऊपर संस्कार है, कर्म फल है, कर्म बंधन है, उसके अनुसार वो देखते रहते कि शरीर कहाँ स्थापित करना चाहिए, अपने आप की एंट्री कहाँ प्रवेश करना चाहिए, वहां वो शरीर उत्पन्न होता है। कारण जीवात्मा है, जन्म शरीर लेता है, इसलिए कहा गया है। यह निषेध का पहला निषेध यह जीवात्मा जन्म नहीं लेता है। दूसरा है ये जीवात्मा मरता नहीं है न म्रियते। भौतिक संसार में जितने भौतिक शरीरों का मृत्यु होता है उनमें से किसी भी शरीर में के जीवात्मा का मृत्यु नहीं है। समझे? जितने भी संसार में शरीर है, कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी से लेके मनुष्य तक, जितने भी संसार में शरीर है उनमें से उस शरीरों में जितने भी आत्मा है उन सारे आत्माओं से किसी एक का भी मृत्यु नहीं होता, लेकिन सारे शरीरों का मृत्यु होता है। मृत्यु कैसे होता है? कर्मों के अनुसार मृत्यु होता है और कर्मों के अनुसार ही अगला शरीर दिया जाता है। कर्मों के अनुसार संस्कार होते हैं, संस्कार के अनुसार वो शरीर प्राप्त करने के प्रभाव रहते हैं, और वो शरीर प्राप्त करने के लिए वो आत्मा भटकते रहते हैं। इसलिए कर्मों के अनुसार मृत्यु के पश्चात शरीर दिया जाता है। पापी व्यक्ति को कैसे शरीर दिया जाता है और पुण्य पुण्यात्मा को कैसे शरीर दिया जाता है। मृत्यु शरीर का होता है पर फिर और शरीर दूसरा मिल ही जाता है। वो ऐसे वो डाय होता है ना, डाय तो डाय मशीन में डालेंगे फाट 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 अनेक प्रकार के इक्विपमेंट तैयार हो जाते हैं ना, ऐसी अनेक प्रकार की डाय तैयार है। किसमें शरीर जाना चाहता है, फटाक से वो पंच कर दिया कि डाय तैयार। तो इस प्रकार से कौन से इसमें जाना है, कौन सी डाय, कौन सा शेप लेना है अगला, कौन सा आकार लेना है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, अपने कर्म बंधन के ऊपर डिपेंड है। और कर्म पाप कर्म और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पापी व्यक्ति को ऐसा शरीर दिया जाता है मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के बाद, शरीर के मृत्यु के बाद पापी व्यक्ति को ऐसा शरीर दिया जाता है, टेम्पररी टेम्पररी बॉडी दिया जाता है उस समय के लिए, जिसमें उसको बहुत दुख और कष्टों का अनुभव है, भयंकर प्रताड़ना है, प्रचंड दुख इसका उस शरीर में उसको अनुभव हो, इसी प्रकार का शरीर उसको दिया जाता है थोड़े समय के लिए। वो यम दूत आते हैं, बड़े भयंकर चिल्ला चिल्ला के आते हैं, ऐसे नहीं आते आराम से, हेलो हाय हाउ आर यू क्या कर रहे हैं चलो, हरे कृष्णा वगैरह नहीं बोलते। हरे कृष्णा बोलेंगे यमदूत आया, हरे कृष्णा बोला तुरंत मुक्त यमदूत हो जाएगा। कौन यमदूत आया, हरे कृष्णा बोलते बोलते लेने के पहले ही वो स्वयं मुक्त हो जाएगा, लेके कैसे जाएगा। तो क्या बोलेगा, यमदूत आएगा पापी व्यक्ति को लेने के लिए, तो चिल्ला चिल्ला के आएगा, बड़ी भयंकर आवाज करके आएगा। तो वो केवल उसी व्यक्ति को दिखेगा जिसका मृत्यु है, तो देखता भी और सुनता भी और कभी कभी सीखता भी है, और केवल सीखता भी नहीं थर थर कांपता है यमदूत का आवाज पर सुन, कांपने लगता है मृत्यु के समय में। और फिर यमदूत उसको ले जाते हैं, ऐसे ही नहीं ले जाते हैं, उनको चलने के लिए जिस रास्ते पे चलना होता है उस रास्ते पे आग बिछाई हुई होती है, आग से चलना होता है। बहुत इंद्रिय तृप्ति की है ना, बहुत पाप कर बैठे। अब देखो कर्म फल तो शरीर दिया जाता है, ऐसे अनेक कीड़े तो आते हैं लाइट पर के कीड़े एकदम छोटे छोटे हैं, ऐसा कर दो आपको बेचारा मर जाता है, अभी ये कीड़ा आया उसको आप कैसा हटाल दिए और चला गया। पर उस रास्ते पे जो कीड़े आते हैं उनकी जो सुंड होती है ना, वो लोक उनका डंक वो सुई के जैसा होता, सेम सुई, और हजारों की संख्या में डूम करते रहते चारों दिशाओं, खाट 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 काटते हैं। यदि कर्म खराब है तो इस प्रकार से हम लोग जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि कर्म खराब मत होने, कर्म बिल्कुल ही खराब नहीं होने चाहिए। और फिर वहां जाने के बाद यमराज के सामने जब वो जीव बोलता है तो यमराज एकदम भयंकर रूप लेके बैठे और शिक्षा सुनाते हैं, उनको दंडित करो इस प्रकार से, ये नर्क में ले जाओ, वो नर्क में ले जाओ, इतने वर्षों तक उधर रखो इधर रखो, उनका हिसाब किताब और देखा जाता डिटेल में। और उसके पश्चात भी कहा गया है, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि उसके पश्चात भी करोड़ों, उसमें तो कहा गया कि शंभर कोटि सौ कोटि जन्म व्यक्ति को कीड़ा बन के रहना पड़ता है, 100 कोटि टाइम कीड़ा कीड़ा, अरे वैरायटी ऑफ कीड़ा है ना। इतने जो कर्म खराब है पाप कर्म, इसका रिजल्ट इतना बेकार है, तो इतना लेके फिर वो सारा संस्कार इतने पाप कर्म होंगे, तो इस प्रकार से उस जीव को वो शरीर दिया जाता है, वो शरीर को टॉर्चर होता है और इसका अनुभव किसको होता है? आत्मा को होता है क्या? ये टॉर्चर जीवात्मा की हो रही है क्या? किसकी हो रही है? उसको ऐसा शरीर दिया जा रहा है जिस शरीर को अनुभव दुखों का हो रहा है, वो अनुभव सूक्ष्म शरीर के कारण, सूक्ष्म शरीर के कारण वो शरीर को अनुभव हो रहा है, जीवात्मा को कुछ नहीं। एक तरीके से वो जीवात्मा को फ्री करने वाली बात है। इतनी पनिशमेंट होगी कि कभी मन ऐसे गलत कर्मों में जाएगा ही नहीं, बोलेगा इतना सोच, पर फिर भी लोग जाते हैं। ये बड़ा कलयुग का दोष है। अब पुण्यात्मा का मृत्यु होता है तो क्या? ये तो पापात्मा हो गया, पापी आत्मा। पुण्यात्मा वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, उसके साथ क्या होता है? कोई पुण्यात्मा का जब मृत्यु अंतिम समय आता है तो उसके पास यमदूत नहीं आते, देवदूत आते। देवदूत आते और बड़े प्रेम से आते हैं, बड़े शांति से उनसे वार्तालाप करते हैं। उनको पता होता है उनको जाना है, और कैसे आते हैं? अच्छे और अच्छे स्तर के पुण्यात्मा है तो उनको प्रणाम करते हैं देवदूत, उनका इतना आदर करते हैं, इतना आदर सत्कार करते हैं कि उनको कहते हैं कि कृपा करके आइए, चलिए आपके लिए विमान खड़ा है, गोल्डन एरोप्लेन, सुवर्ण विमान, आइए आपके लिए। उनको पूरा सुवर्ण विमान में बैठाया जाता है और वो विमान धर्मराज के पास जाता है, धर्मराज मतलब यमराज के पास जाता है। परंतु यमराज इस जगह पे धर्मराज के रूप में बैठे, देव के रूप में बैठे, उन्हें कैसे सिंह लगे हुए हैं और एकदम देव के रूप में बैठे हैं और लालाहित है कि अब इसका मैं इस पुण्यात्मा का किस प्रकार से स्वागत करूं। और जैसे ही ये विमान पहुंचता है, धर्मराज स्वयं उठते हैं, उनकी बहुत अच्छा स्वागत करते हैं, उनके गले में माला डालते हैं, आइए 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 बैठिए, सिंहासन पे विराजमान होइए। उनके लिए आश्रम रहता है, बैठते हैं। धर्मराज उनके साथ बहुत अच्छे आनंदमय वार्तालाप करते हैं, आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं, और वहां से चर्चा होने के पश्चात वो कहां जाते हैं? उच्च स्तर के लोगों में जाते हैं, स्वर्ग में वगैरह उच्च स्तर के लोगों में। इस प्रकार से पुण्यात्मा और भक्त, पुण्यात्मा के भी ऊपर की स्टेज है भक्त, क्योंकि भक्त का लक्षण है वो सूक्ष्म शरीर के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए होता, नियंत्रण किए हुए, साधारण होगा दिखने के लिए। एक छोटी सी कथा है, एक माता जी थी एक गांव में, झोपड़ी में रहती थी, वृद्धावस्था में थी, लेकिन पहले से ही कृष्ण को बहुत मानती, जो कुछ भी बात है वो सब कुछ कृष्णार्पण कर, कोई एक चीज भी ऐसी नहीं होगी उनके पास जो वो अपने लिए रखती, जो भी कुछ है कहती कृष्णा, कुछ कार्य किया कुछ कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो भी कुछ होता था वो कृष्णार्पण करती, वो कभी कभी गोबरी थापती थी, गोबरी मतलब कंडे, गाय के गोबर के गोबरे थापते थे, वो गोबरी ऐसी थाप देती थी और ऐसे दीवार पे फिर उसको सुखाने के लिए पटक देती, पटकते वक्त बोलती थी कृष्णार्पण। अब ऐसा वो करते, ऐसा कृष्णार्पण करते थे, उस गोबरी में ना थोड़ा सा गोबर उड़ते 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 वो पास में भगवान कृष्ण का मंदिर था, वो मंदिर में भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह पे जाके चिपक जाते थोड़ा सा गोबर, वहां का पुजारी बड़े हैरान हुए, रोज रोज ये गोबर कौन लगाता है भगवान का, तो रोज आके भगवान का अच्छी सेवा करके वो गोबर को स्वच्छ करते, फिर दूसरे दिन वो कृष्णार्पण करती और गोबर एक दिन उनको पता चला पुजारी जी को कि अरे ये तो ये माता जी का कार्यकलाप है। तो माता जी को प्रार्थना करने लगी, वो कही मैं क्या करूं, मैं कोई भी कार्यकलाप कोई भी बात ऐसी नहीं है मेरे से जुड़ी हुई जिसमें कृष्ण नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं, और गोबरी भी है तो उसमें मुझे कृष्ण चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। पुजारी उनके भाव को समझ गए, पुजारी क्या उनका इतना शुद्ध भाव, ठीक है कीजिए सेवा रोज गोबर की, रोज गोबर की सेवा भगवान, भगवान ही बड़े प्रेम से स्वीकार करते थे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, भक्ति भाव से व्यस्त, भाव से कुछ भी स्वीकार कर लेते, और स्वीकार कर लेते। ऐसे कई वर्षों तक वो कार्यकलाप चला, उनका अंतिम समय आ गया माता जी का। जब उनका अंतिम समय आया तो भगवान ने उनको लेने के लिए वैकुंठ से, स्वर्ग वगैरह से नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट। ये जो मैंने पहला जो रूट बताया पुण्यात्मा का, वो ब्रेक जर्नी है, तो ट्रांजिट में जाना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, ट्रांजिट से फिर निकल के स्वर्ग वगैरह में। और जो भक्त का होता है उसके लिए ट्रांजिट वगैरह कुछ नहीं है, वो सुपर फ्लाइट है, उड़ गई की सीधा वैकुंठ। हाँ, तो इस माता जी के लिए सीधी वैकुंठ से फ्लाइट आ गई, विमान आया। माता जी ने देखा, माता जी ने कहा मेरे से संबंधित मुझे जिसका किसका संपर्क होगा सब पहले कृष्णार्पण। जैसा ही वो विमान आया उनको देखा, उन्होंने देखा विमान, माता जी तुरंत गई कृष्णार्पण। जैसे ही माता जी ने कृष्णार्पण किया विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए, टूट गया विमान। भगवान ने स्वीकार कर लिया, कृष्णार्पण किया, ठीक है टूट गया विमान। भगवान एकदम चिंतित हो गए, अरे इसको भी मुझे दे दिया, मेरा विमान भी मुझे दे दिया कृष्णार्पण। जरा एक सेकंड का भी विचार न करते हुए, लेट डिले न करते हुए, तुरंत जिस अवस्था में भगवान बैठे थे तुरंत खड़े हो गए, भागते 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 स्वयं आ गए माता जी को लेने के लिए, और स्वयं उस माता जी को स्वयं पास में उठा के लेके गए भगवान स्वयं साक्षात। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो भक्ति का फल ये, जो भक्त होते हैं उनको ये दशा, इनकी उनको ये फल प्राप्त होता है। तो आप सुंदर उदाहरण है हरिदास ठाकुर, साक्षात भगवान चैतन्य उनको उठाए, अपने पास लिए, अपने छाती से लगाए, और इतना करके भी केवल खड़े नहीं रहे, उसको उठा के, मतलब उनको उठा के, हरिदास ठाकुर जी को उठा के हृदय से लगा के नृत्य करने लगे, और कितनी देर तक नृत्य किया सोचिए। तो भगवान साक्षात हमारे साथ आलिंगन करके नृत्य कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम कल्पना भी यदि करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर में। तो भक्तों को इस प्रकार से भगवान स्वयं भक्तों की चिंता करते हैं, इसलिए पुण्यात्माओं के ऊपर की स्टेज है भक्त, इनके कोई कर्म बल संस्कार ये सब इनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता, उनको उच्च स्तर का ही जीवन मिलते रहे। तो यहाँ जो चर्चा हुई है वो ये कि यह जीवात्मा मरता नहीं, क्योंकि ये जीवात्मा कर्म करके, अब जिस प्रकार से कर्म करता है, जो संस्कार उसके ऊपर हो जाते हैं, उस संस्कार के अनुसार वो अगला आगे का शरीर प्राप्त करते रहता है। फिर क्या है, न तो ऐसा है कि एक बार उत्पन्न होकर फिर नहीं होता है, मतलब जैसे अभी हमने बताया कि एक बार आ गया बस हो गया खत्म, ना तो किधर जाता है ना आता है, खत्म हो गया शरीर के साथ लुप्त हो गया। इसका अर्थ कि पहले कोई जीवन नहीं था और आगे भी कोई जीवन नहीं था, इसका अर्थ क्या है,
पहले भी कोई जीवन नहीं था, आगे जीवन में ज्यादातर वैज्ञानिक विचारधारा को जो कुछ है बस अभी है, खूब खाओ, खूब मजा करो, धीरे तुष्टि करो, खूब सो, सारे प्रकार के विचार करो और कुछ साइंटिफिक तरीके से जाकर कुछ डेवलप करो। सब इसी सुस्ति से, इसी बुद्धि से लेके इसको डेवलप करो। भाई वो बनाते हैं निर्माण, उधर भी जब कुछ लेते हैं उसी को बनाते हैं। और क्या बोलते हैं सब करने के बाद? ईश्वर भगवान तो भाई
से हो गया। तो फिर अभी बंदर से क्यों नहीं होता?
तीन बंदर बहुत सारे थे, दो चार बंदर थे, एक मनुष्य बन गया, बंदर मर जाते बंदर के रूप में, बंदर होते मनुष्य। कोई कहे हमको कि वो जब बहुत छोटा था वो साइंटिस्ट, बहुत छोटा था एक्चुअली, वो साइंटिस्ट दिखने के लिए बड़ा विद्रुप था, स्मार्ट थे, बड़ा विद्रुप दिखता। अगली स्कूल में जाता था, बहुत होशियार था, स्कूल में जाता था, बच्चे उसको बहुत चिल्लाते थे, क्या बोलते, मर की मर की मर की, बंदर बंदर ऐसे चिल्लाते थे। उसके बाद क्रोध आया, एक दिन मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा कि तुमको सबको, ना केवल तुमको, पूरे तुम्हारे पूरे पूर्वजों को बंदर बना दूंगा। ऐसा क्रोध आया उसको इस बात से, इधर उधर घुमा कर दो चार बोल एकत्रित किए, कुछ कर दिया, बोला कि मनुष्य जो है बंदर से उत्पन्न। तो इस प्रकार से अपने ही पूर्वजों को, अपने दादा परदादाओं को बंदर मानने वाली विकृति है क्या? तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। शास्त्र क्या कहता है कि जीवात्मा नित्य है और आगे भी रहता है, और ये लोग क्या कहते हैं कि जीवात्मा पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं था, बंदर से आगे। गलत अपप्रचार है, अज्ञान। अब गोपाल जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो वैज्ञानिक लोग हैं इसके आगे और क्या करने जा रहे हैं, दो चार प्रकार के रसायनों को एकत्रित करके उससे जीवात्मा को बनाने का प्रयास है। दो चार रसायन केमिकल्स को एकत्रित करके क्या करने का प्रयास करें, जीव तैयार करने का प्रयास करें। लेकिन भगवान जी का ऐसा नहीं होगा, कैसे होगा, ये जो रसायन है तो खत्म हो जाता है, जो केमिकल है तो नष्ट हो जाता है, वही जीव का होगा कैसे, यह अज्ञान। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा अभी तक, निषेध, तीन प्रकार के निषेध देखे। पहला है जीवात्मा जन्म नहीं लेता, दूसरा है जीवात्मा मरता नहीं, जन्म नहीं लेता है, शरीर जन्म लेता है, जीवात्मा जन्म नहीं, शरीर के कारण जीवात्मा, दूसरा क्या है वो मरता भी नहीं, मरता नहीं है, बार बार जन्म लेता है, बार बार जन्म कैसे लेता है, गर्भबंधन के द्वारा, गर्भबंधन किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसके द्वारा सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के द्वारा बंधन में आने के लिए, और फिर दूसरा शरीर प्राप्ति, दूसरे कौन लोग होते हैं, बाकी पापात्मा पुण्यात्मा और सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो इस प्रकार से। और तीसरा बात देखिए, जो लोग ये सोचते हैं जो आपका पहले भी नहीं था और ना वो भी नहीं होगा। अब हम विशेषताएं देखेंगे, चौथा पॉइंट लास्ट में देखेंगे, विशेषताएं क्या है, अजन्म क्या कह रहे हैं, जीवात्मा अजन्मा है।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे।
नाच के पास में आप सब प्रवचन दे, सब पांच में रास्ते करो। तो दूसरा विशेषता जो है इसमें कहा गया है अजो नित्य, अजो है, अजो मतलब अजन्म है, मतलब विशेष प्रयास करने से जन्म मिलेगी, और तो अभी एक आत्मा को तैयार करती है, लेटर डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्रोध को तैयार करते थे, बहुत सी चीजें तैयार की है, क्रोध को तैयार करते थे, विशेष प्रयास 24 आवर तीन शिफ्ट में काम करेंगे, फिर भी जन्म नहीं होती, आत्मा को नहीं मिलेंगे, ये अजन्म है। भगवान जो बोल रहे हैं वो उन्होंने करके दिखाया है, श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में ब्रह्म विमोहन लीला है, भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ बहुत साक्ष्य प्रेम का रसास्वादन कर रहे हैं, अपने मित्रों के साथ सखाओं के साथ बैठे खेल रहे हैं, अनेकों प्रकार से खेलते, गुल्ली डंडा खेलते हैं, कभी कभी एक दूसरे को लुका छिपी खेलते हैं, कभी एक के पीठियों पर बैठ के भागते हैं। इस प्रकार से बहुत अच्छे साक्ष्य रस का आस्वादन भगवान कर ऐसा खेलते खेलते दोपहर का अपने माध्यम का हो गया। सभी को पूछेंगे कथाओं को भूलेंगे, भगवान को भी भूलेंगे, सभी ने अपने आप में टिफिन लाया था, सब गोल करके बैठ गए और गोल करके बैठ के सब एक खा रहे अपने चीजों से जुड़ रहा है। और भगवान क्या कर रहे
बाजू वाले में
इसमें क्या है, क्या है, किसी का वजन ला रहे हैं, किसी का संदेश है, कचोरी है। भगवान सोचे कि अभी मैं एक एक किसी का एक एक का एक एक चुराता हूँ, जो बाजू में बैठे तुरंत उसका कुछ लेके भगवान में आओ झूठा। और अपना जो लिए हुए थे, अपना जो किसी था भगवान का, वो अपने हाथ में पहले ले लिया, दूसरे से कोई दूसरा न ले
रोटी अपने हाथ में ले ली।
अब जब हाथ में लेके खाना है तो कौन से हाथ में लेगी, अपने लेट खाएंगे, रोटी ले ली, उसके ऊपर सब्जी रखी, जोरदार रोटी कर रहे हैं हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम।
अपने लेट ध्यान में लाए हाथ से रोटी रखी, उसके ऊपर चपाती सॉरी सब्जी रखी, जो कुछ भी अचार वगैरह था, सीट वगैरह था, कुछ ये दो उंगली की बीच में एक अचार रखा है, मतलब सारी चीजें अपने हाथ में रखी,
दूसरा बचा हो गया वो दूसरा के गले में इससे धंधे दिया,
जैसे तैसे एक समुद्र वहां किसने पकड़ लिया, पूरे लेफ्ट हैंड में पूरा टिफिन
भगवान ने रखी,
नई ट्रेन से खा रहे, कभी चूल्हा में खा रहे, झूठा ऊपर से जीतते जीतते आ गए, उनको रिपोर्ट लग गया था कि कोई बालक है, बड़ी लीला कर रहा है, राज लीला है, जरा देखो कौन मिले कैसे पता नहीं निकली आए देख रहे बहुत देर से सब लोग कहते नहीं है भगवान, भगवान ये आते हैं तो मुझे कहते हैं तो ब्रह्मा हूँ, कभी ज्ञान सब मेरे को है, सब कुछ जानता हूँ, भगवान के बारे में कैसे नहीं जान सकता मैं, तो भगवान को पहले मुझे बताया गया आने के पहले। संसार में ऐसा ही अहंकार जीवों को रहता है, थोड़ा बहुत जान गया नहीं बोलते मैं तो सब जान गया। प्रभु जी भगवद गीता के भागवत के क्या भगवद गीता जो अर्जुन को कृष्ण ने बोला वही ना भगवद गीता, सब जानते बचपन से हमारे पिताजी पिताजी के पिताजी उनके पिताजी हमारे परिवार में इतनी जरूरत भगवद गीता का क्या होता है पाठ होता है, इसलिए हमको ब्रह्मदेव बोले हमको सब पता है ये भगवान कैसे हो सकते हैं, लेफ्ट हैंड में लेके कोई खाता है कि भगवान को भी इतना सिंपल रूल इनको पता नहीं है, लेफ्ट हैंड में लेके खा रहे झूठा। इन्होंने सोचा ठीक है फिर भी ये माया भी है, इनकी माया की तो मैं परीक्षा करता हूँ। इन्होंने क्या किया ब्रह्मदेव ने उनके कथाओं को गायों को सभी को चुरा के घर वालों को ले उठा के लेके अब यहाँ आप सोच सकते हैं मेरे ध्यान से सुन भगवान भगवान ने तुरंत उन जीवों को उत्पन्न नहीं किया, उन जीवों को जो ब्रह्मदेव लेके गए तुरंत उन जीवों को तुरंत ऐसे मैग्नेट किया बनाया उन्होंने क्या किया अपना स्वयं का विस्तार किया, जीवों को नहीं बनाया कैसे गुरु बना सकते क्योंकि वो विभू है, स्वयं का विस्तार स्वयं का विस्तार किया, बनाया नहीं, उसका अर्थ है कि यहाँ जो भगवान बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं,
अजन्मा है, ये अजन्मा है।
भगवान ने इस सृष्टि को भागवत में स्वयं का विस्तार किया, लेकिन उनका फिर से जन्म करके उनको पढ़ा के बढ़ा के बढ़ा दिया, कर सकते उनका फिर से जन्म करवा के उनको पढ़ा के बढ़ा करके हल्के का ऐसा बढ़ा के उनको खुद कर
ऐसा किया।
इस प्रकार से यह बात सिद्ध होती है कि भगवान अजन्म है, जीवात्मा अजन्म है, कितने भी प्रयास होते या विशेष प्रयास होते उत्पन्न नहीं किया जाता। और फिर क्या है, नित्य है, मतलब नित्य है का अर्थ क्या है, परिवर्तन रहित है, परिवर्तन रहित है, मतलब ऐसा सोचते हैं कि ये जीवात्मा आ गया है इस संसार में, जन्म साधारण व्यक्ति के जैसा ले लिया है, अब बहुत प्रयास किया और ईश्वर बन गया, जन्म तो साधारण व्यक्ति लिया, बहुत अजीब से लिया सब कुछ, और बहुत अब बहुत प्रयास किया, 25 साल 30 साल तक 35 साल तक कभी कभी 50 साल तक, और आप पता चला आप तो वो ईश्वर है, और अंश की रूप में अंश और अनु और विभु ये तो ही रिलेशनशिप है, ये ईश्वर कभी नहीं बन सकता, ये अंश ही रहेगा अनु ही रहेगा, ये भगवान नहीं बनेगा, लेकिन उस भगवान की सेवा करके वो ईश्वरीय गुण भगवत गुण अंश था अपने आप में रहा, भगवान बन नहीं सकता, ईश्वर बन नहीं सकता, लेकिन भगवान की सेवा करके भगवान के जो गुण है वो अंश कहा अपने अंदर उसको गुण प्राप्त हो सकते अंश नाम ये बात हो सकती है, परंतु वो नित्य है, नित्य ही रहेगा, तीसरा है शाश्वत है, सदा रहने वाला शाश्वत ही है, गारंटी है, ऐसा नहीं है कि आकार में जब छोटा था तो शरीर 5 किलो का था, आपने 10 किलो का हो गया, 15 किलो का, 50 किलो, 100 किलो का आकार भी बदल गया, तो इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आत्मा जब छोटा था तो बालों के 1000 10000 कर के अनुसार भाग के अनुसार आत्मा का साइज था, थोड़ा बड़ा हो गया तो आत्मा का भी साइज बढ़ गया, और बड़ा हो गया तो और आत्मा का साइज, 2 साल का हो गया तो आत्मा इतना बड़ा, ऐसा नहीं, शाश्वत है आकार, शरीर के इस प्रकार आकार जीवात्मा उसमें शाश्वत हो या पुराण हो, तो पुराना पुराण है, पुराण का अर्थ होता है, पुराण का अर्थ पुराण अपि नवम, पुराण पुराण अपि नवम, मतलब पुराना या प्राचीन होते हुए भी नवीन, पुराण का अर्थ क्या होता है, प्राचीन होते हुए भी नवीन, पुराना है लेकिन आज नवीन युग में इस युग के लिए भी अप्लाइड है, मतलब ये आत्मा जीवात्मा प्राचीन मतलब नित्य है, प्राचीन है, कई युगों के पहले भी था, लेकिन नवम फिर भी नवीन, ओल्ड हो गया नित्य नवीन, इस प्रकार से ये जो श्लोक है क्या है, अजो नित्यम शाश्वत चाहेंगे चार विशेष, अब चौथा निषेध है शरीर के नष्ट होने से शरीर के, यही बात है कि चाहे किसी भी तरीके से शरीर को नष्ट कीजिए, किसी भी तरीके से आत्मा कहते हैं अर्जुन अनु आत्मा के समान है, इसलिए वास्तविक स्वरूप को भूल रहे हैं कि अनु आत्मा का और विभु आत्मा का डिफरेंस क्या है, अनु आत्मा
भूल
और विभु आत्मा
भूल।
के द्वारा मनुष्य किए जाने की आवश्यकता है। मतलब मैंने कहना पकड़ेगा आध्यात्मिक प्रगति किस प्रकार से करने की और ये लगे ना प्रकार के भगवान जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण के उपदेशों के द्वारा उनके अनुभक्त जो भी आचार्य अगर आते हैं गुरु भक्त अगर आते हैं उनके द्वारा उनके साथ चर्चा करके उनके उपदेश प्राप्त करके उनके ज्ञान प्राप्त करके हम इस प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति आध्यात्मिक प्रगति करने की केवल एक प्रिंसिपल फॉर्मूला है। क्या है? एक फॉर्मूला है सारांश। आध्यात्मिक प्रगति स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मटेरियल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति कम भौतिक इच्छा। मेरे पास मतलब 100 में से 30% मेरे मुझे आध्यात्मिक प्रगति करने की इच्छा है आध्यात्मिक प्रगति करता हूँ लेकर रहा करता हूँ 30% करता हूँ तो इसका अर्थ है कि 70% भौतिक इच्छा है। 70% भौतिक इच्छा होगी तो केवल
30% ही आध्यात्मिक इच्छा 90% भौतिक इच्छा रहेगी तो केवल 95% भौतिक इच्छा रहेगी तो 98% रहेगी तो मतलब हमारे लिए कौन आएगा?
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।
और 0% 100% हम इसको बुलाना चाहते हैं हमारे यहाँ है ध्यान देके सुनेंगे तो आसान होगा। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है दूसरे श्लोक के क्या साथ क्या संबंध है करके आगे बढ़ते हैं परंतु इस श्लोक में ये समझना है कि प्रत्येक श्लोक हमारे रोज के जीवन में गहरी है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे।